हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकम्। वंदेहम श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज दूसरे दिन के इस कार्यक्रम में आने के लिए, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कैसे हम लोग सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और आज बहुत महत्वपूर्ण विषय हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और वो है मन को कैसे वश में कर सकते हैं। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आशा है आप सबको आवाज स्पष्ट आ रही है, क्लियर है आवाज? ओके, थैंक यू। सो आप सब लोग जहां भी हैं आशा करते हैं स्पष्ट सुन रहे हैं। सो आज हम लोग ये बहुत महत्वपूर्ण विषय अब चर्चा करेंगे, और वो ये है कि कैसे मन को वश में किया जाए। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कल भी हम लोग कुछ प्रश्नों को देख रहे थे, और ज्यादातर प्रश्न का संबंध मन से था, कैसे मन को वश में कर रहे, ये चीज होती है नहीं करना चाहते फिर भी हो रही है, कैसे हम इसको प्रयास करें। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हम लोग जान सकते हैं। तो अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे आपसे, तो अब आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिए। सभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे आपसे, और बहुत अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आशा है आप सब अब देख पा रहे हैं इसको। सो यहां पर चर्चा ये है कि मन को वश में कैसे करना है। सो कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी मंत्र ऑफ लाइफ, हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं 4 दिन का, आप सब जिसमें जुड़े हुए हैं, और इसके जो विषय आप देख रहे हैं, जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं क्यों होती हैं, मैं कौन हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, सच में है भगवान, या मन को कैसे नियंत्रित करें और शाश्वत सुख कैसे प्राप्त कर सकते। तो कल हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि सुख, सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो, और आज हम लोग नियंत्रण, मन को कैसे नियंत्रण करें, इसको इस विषय को देखेंगे। सो आर्ट ऑफ माइंड मैनेजमेंट, यहाँ पर आप जैसे चित्र देख रहे हैं, हमें ये चित्र बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मन के ऊपर एक मीटर लगा हुआ है, आप उसको इधर घुमाओ चाहे उधर घुमाओ। सो उसके अनुसार जब हम ऐसे मीटर, अगर ऐसा हो सकता, मान लीजिए कि हमारे मन पर एक ऐसा मीटर लग सकता कि उसको जब चाहे खुश रहे, फिर जब चाहे थोड़ा दुखी हो जाए, इधर घुमा दो लाल पे आ गया दुखी हो गया, फिर इधर नीला गया सुखी हो गया, तो कितना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मन नियंत्रण में नहीं है। तो इसलिए इसको समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ कहाँ लाभ देगा, ये हमें हमारी सबसे पहले स्टडीज में लाभ देगा। आप लोग अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा इसके द्वारा, क्योंकि फोकस बढ़ जाएगा। कैसे कॉन्सेंट्रेशन, ऑफकोर्स हमने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन मेमोरी पावर का हम लोग अलग से एक सेमिनार करेंगे कभी आप सबके लिए 3 दिन का, लेकिन इसको इसके द्वारा भी आपका फोकस बढ़ेगा। दूसरा, इसके द्वारा आप जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, कभी जीवन में अच्छा होता है कभी बुरा होता है, तो उसको आप आराम से सहन कर सकोगे, आपके अंदर शक्ति आएगी। बहुत सारी चीजें होती है ना जीवन में, नहीं चाहते हो जाता है, तो कैसे उसको संभालना है ये इसमें होगा। और ये हमें जानना चाहिए, हमारा जो जीवन है ये बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप में से कई विद्यार्थी, आप जानते होंगे कि आपके, हो सकता है कि किसी ने, आपके साथ रहने वाले कोई व्यक्ति ने पढ़ाई करना छोड़ दिया, या फिर कॉलेज छोड़ दिया, या फिर कभी कभी आत्महत्या कर ली। ये सब बर्बाद करने के लिए जीवन नहीं है हमारा। हमारा जीवन बना है कुछ करके दिखाने के लिए, क्यों हम इसको वेस्ट करें किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। तो इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अपना जीवन ये केवल मन के प्रभाव में आकर बर्बाद मत कीजिए। तो इसलिए मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अब हम उसकी चर्चा करेंगे, और जो भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद देसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो इनकी शिक्षाओं के आधार पर है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि जब हम मन को वश में करने की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक है मनुष्य ही बात करेंगे, कोई पशु तो बात नहीं करेगा कि मन को कैसे वश में करना है। तो मनुष्य जीवन का क्या महत्व है? तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगर पूछा जाए आपसे कि आप ह्यूमंस हो तो मनुष्य जीवन का क्या महत्व है आप बताइए, तो आप क्या बताओगे, आपके मन में क्या आएगा? हो सकता है आपके मन में आए कि मनुष्य जो है वो पैसा कमा सकता है, पशु पैसा नहीं कमा सकता। आपके मन में आए कि जो मनुष्य है वो अच्छा परिवार में रह सकता है, एक दूसरे से अच्छा संबंध रखता है, लेकिन पशु भले पैसा नहीं कमाए लेकिन पैसे कमाने से जो मिलता है वो उसको वैसे ही मिल रहा है, खाना पीना सोना तो उसको वैसे भी मिल रहा है। और जहां तक परिवार की बात है तो यस, देखिए इस चित्र में पशुओं के भी अच्छे से परिवार होते हैं, बड़े ओबीडियंट परिवार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह पूरा परिवार खड़ा है। सो पशु जीवन और मनुष्य जीवन में कुछ तो अंतर और कुछ समानताएं होनी चाहिए। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जितने भी पशु होते हैं वो खाते हैं, खाना तो कॉमन है और हम लोग भी खाते हैं, हाँ केवल वो लोग जंगल में खाते हैं, हम लोग टेबल पर बैठकर खाते हैं, अंतर इतना ही है। या फिर सोना, देखिए पशु कितने आराम से सोते हैं, हम लोग को मिलता है ऐसे आराम से सोना, लोगों को गोली खानी पड़ती है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और पशु बड़े आराम से सोते हैं, हम लोग भी सोते हैं। या फिर संग करना, सो वो पशु भी करते हैं मनुष्य भी करते हैं। या फिर अपने आप को बचाना, पशु भी बचाते हैं अपने आप को और मनुष्य भी बचाते हैं, केवल मनुष्यों को आर्मी बनानी पड़ती है। तो अब हम एक बहुत सुंदर चित्र देख रहे हैं। हमने अभी अभी आपसे कहा कि पशु भी कुछ करते हैं, हम लोग भी कुछ करते हैं, तो फिर अंतर क्या है? अब यहां जो आप देख रहे हैं ये चित्र में ऊपर एक परिवार बैठा है खा रहा है, और नीचे एक और परिवार बैठा है वो भी खा रहा है। सो नीचे के परिवार और ऊपर के परिवार में अंतर क्या है? अगर ऊपर बैठा परिवार भी, हालांकि उसको मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन अगर वो कार्य केवल, आई थिंक किसी ने मैसेज भेजा, वॉइस इज क्रैकिंग, आवाज क्रैक हो रहा है, आप सबको आवाज क्लियर आ रही है ना? एक सेकेंड, ओके थैंक यू। सो जिसको वॉइस क्रैकिंग हो रही है, आई थिंक आपका इंटरनेट वीक होगा, प्लीज चेक योर इंटरनेट, थैंक यू। सो अभी आप ये जो चित्र देख रहे हो तो ऊपर एक परिवार है, नीचे भी एक परिवार है। सो अगर ऊपर बैठा परिवार नीचे बैठे परिवार की तरह ही कार्य करेगा तो फिर अगले जन्म में क्या होगा, नीचे का परिवार ऊपर बैठा होगा और ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम मनुष्य जीवन पाकर, हमारे जो अभी इस समय की हमें प्रेजेंट बॉडी मिली है, अगर हम सही उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर ये अवसर चला जाएगा हाथ से। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस अवसर को जाने मत दीजिए, इसके महत्व को समझिए। मनुष्य जीवन को मनुष्य बने रहिए, एक सोफिस्टिकेटेड पशु मत बनिए। आज समाज में जो मनुष्य है वो सोफिस्टिकेटेड पशु बन गया। क्यों पशु बन गया है सोफिस्टिकेटेड? क्योंकि काम ऐसे ही कर रहे हैं, दिन भर चिंतन किसका है, खाने पीने सोने। क्या ऐसा चिंतन है जो मनुष्य जीवन में हम कुछ और कर सकते हैं? तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें कोई सोफिस्टिकेटेड पशु नहीं बनना है। आज का जो समाज है बहुत एडवांस्ड हो रहा है, हम लोगों ने बहुत जगहों पर एडवांसमेंट कर लिया है, अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई हैं, प्लेन्स आ गए हैं, रॉकेट्स आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया, एडवांस कर लिया हम लोग हो गए। लेकिन इस एडवांसमेंट में हमें मिला क्या है आप जानना चाहेंगे? सो हमें इस एडवांसमेंट में क्या एडवांसमेंट क्या बड़ा है? हिंसा, हम लोग देखते हैं कि वॉयलेंस हमेशा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर इस समय युद्ध होता रहता है, वॉयलेंस बहुत बढ़ गया है, हर तरह का वॉयलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, मर्डर बढ़ गए हैं, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, करप्शंस बढ़ रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, रेप्स बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह ये सब बढ़ता जा रहा है। अगर हम प्रगति कर रहे हैं तो फिर ये चीजें क्यों बढ़ रही हैं? इनको नहीं बढ़ना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन हम देखते हैं कि ये बहुत बढ़ रहा। चाहे आप कोई भी ले लीजिए, वॉयलेंस लीजिए, मर्डर लीजिए, सुसाइड लीजिए, रेप्स लीजिए। कुछ समय पहले दिल्ली में एक निर्भया केस हुआ था, आप सबको पता होगा, ये तो नेशनल न्यूज था, बहुत बड़ा केस हो गया था। एक कॉलेज जाने वाली लड़की का रेप कर दिया था, उसको मरना पड़ा, इतनी बुरी हालत उसकी हो गई कि अंततः उसको फिर वो हमने जो सुना था न्यूज़पेपर के द्वारा कि वो जीना चाहती थी, वो बार बार अपनी मदर से कह रही थी मैं मरना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सारा प्रयास करके भी वो मर गई। सो क्या गलती थी उसकी? उसकी गलती ये थी कि वो एक ऐसे समाज में रह रही है जिस समाज ने मानवीय मूल्यों को खो दिया, जिस समाज ने ऐसा मान लिया है कि बस जो मेरे मन में आए वो करना वही ठीक है। लेकिन ये मानव समाज नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन ये जीवन के मूल्यों को हम छोड़े नहीं। क्या लाभ होगा अगर आप अच्छे से व्यापार कर रहे हो और जाकर कहीं पर किसी का रेप कर रहे हो? क्या लाभ होगा अगर आप व्यापार कर रहे हो और किसी के मर्डर का प्लानिंग कर रहे हो? क्या लाभ होगा अगर हम लोग जीवन जी रहे हैं लेकिन दूसरों को दबाकर, दूसरों पर हिंसा करके जी रहे हैं? तो इसलिए हमें बहुत महत्वपूर्ण चीजों को अपने जीवन से अलग नहीं कर देना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं हमेशा ये सब बढ़ रहा है, और इसके अलावा कम्युनल वॉयलेंस छोटी छोटी चीजों पर हो जाता है, पब्लिक अनरेस्ट होता है, वॉर्स हो रही हैं, हम लोग तो जानते भी नहीं है, हम यहां पर बैठे हुए हैं आराम से और बॉर्डर पर क्या हो रहा है, बॉर्डर पर रोज फायरिंग होती है, हम लोगों को नहीं पता। हमारे जो देश के जवान हैं अपनी जान लगा रहे हैं, तब हम बॉर्डर पर रोज फायरिंग होती है, रोज कोई ना कोई मरता है, न्यूज आती नहीं है। क्यों नहीं आती है न्यूज? इसका एक कारण है कि बाकी सारी न्यूज को ग्लैमराइज किया गया है। आप उदाहरण जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी न्यूज आती है और कैसे ग्लैमराइज होता है सब? सो हम लोग देखते हैं कि इन सारी, जैसे हमारे देश के कोई जवान की मृत्यु हो जाए तो कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं बनती है, ठीक है, कोई एक दो बार आ जाता है, कोई कहीं कह देते हैं ये हो गया, कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, जबकि वो लोग अपनी जान दे रहे हैं हमें सुरक्षा देने के लिए, लेकिन वो बड़ी न्यूज नहीं है। बड़ी न्यूज क्या है? ऐश्वर्या राय की लड़की ने चलना शुरू किया, वो बड़ी न्यूज हो गई, सब देख रहे हैं उसको। क्या फर्क होने वाला है आपको ऐश्वर्या राय की लड़की ने चलना शुरू किया देखकर? लेकिन इनको ग्लैमराइज किया जाता है, उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है न्यूज में, बस यही है यही है, और सब देख रहे हैं, वाह हमने देखा ऐश्वर्या राय की लड़की ने चलना शुरू किया। क्या लाभ होने वाला है आपको? विराट कोहली ने सिक्स मारा, ग्लैमराइज्ड, सब उसी पर लगे हैं, लेकिन हमारे देश के जो जवान जो एक्चुअली हमारे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो रोज वॉर हो रही है, उनके लिए किसी का ध्यान नहीं। तो ये हमारी मॉडर्न, हम ये अभी आपको केवल बता रहे हैं कि हमारे जो आधुनिक प्रगति हम जो कर रहे हैं क्या मिल रहा है उससे हमें, तो वॉर्स बढ़ रही है, टेररिज्म बढ़ गया है, कहीं पर भी देखिए तो कोई सुखी नहीं, कहीं पर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो गया यहां पर, वहां टेररिस्ट अटैक हो गया, तो सब बढ़ता जा रहा है। टाइम मैगजीन ने एक ऐसे ही सर्वे किया था कि समाज में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, सबसे पहला है क्राइम और दूसरा है लैक ऑफ मोरालिटी, और अगर यूथ में देखा जाए तो यूथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ड्रग्स का, यूथ में प्रॉब्लम है, यूथ भी सुसाइड कर रहे हैं। सो क्राइम, लैक ऑफ मोरालिटी, मतलब कोई सिद्धांत नहीं रह गए हैं, बस जीवन जीना है पशुओं की तरह, और इसीलिए क्या क्या हो रहा है अमेरिका में जो बहुत बड़े हुए देश हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जेलों में जा रहे हैं, गन की सेल्स बढ़ रही है, मर्डर्स बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। साउथ अफ्रीका का अगर फिगर लें तो एवरेज नंबर ऑफ रिपोर्टेड रेप केसेस साउथ अफ्रीका में एक साल में 33,000, ये पुराने फिगर हैं, 10 साल पुराने कहने चाहिए, बहुत बढ़ चुका है अभी। तो ये हमारी प्रगति है, भारत में भी कमी नहीं है। और एक सर्वे किया गया था कि स्कूल खत्म होने तक जब बच्चा क्या देखता है, तो जो एवरेज चाइल्ड है 8,000 मर्डर देख चुका होता है 10वीं पास करने तक, 1,00,000 हिंसा की घटनाओं को देख चुका है, और भी बहुत कुछ। तो ये सब देखकर उसके मन में क्या होगा, उसको लगता है हीरो बनना है तो दूसरे का खून करना चाहिए, तब हम हीरो बन सकते हैं, बंदूक चलानी चाहिए हीरो बन जाएंगे। भारत में एक कई साल पहले चंडीगढ़ में एक केस हुआ था कि सातवीं कक्षा के विद्यार्थी, उसके पिताजी पुलिस में थे, घर में गन थी, वो एक दिन गन लेकर चला गया स्कूल में और उसने 9वीं कक्षा के विद्यार्थी को मार दिया। तो जब पुलिस वालों ने उससे पूछा लड़के से कि तुमने क्यों मारा उसको, तो लड़का बड़े फिल्मी स्टाइल में कहता है कि अगर मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। तो ये सब देखिए असर है फिल्मों का, कि देखकर क्या हो रहा है। अमेरिका में तो बहुत होता है, हमने सुना अमेरिका में एक बार एक लड़का, कुछ स्कूल का लड़का गन लेकर गया, उसने अपने 4-5 फ्रेंड्स को शूट कर दिया, एक टीचर को शूट कर दिया। तो जब किसी ने बताया तो हमने कहा बड़ा बुद्धिमान नहीं है, भारत होता तो पहले टीचर्स को शूट करते बाद में फ्रेंड्स को। सो भारत के थोड़े बच्चे बुद्धिमान होते हैं ना। सो ये चीजें वहां पर बहुत चल रही हैं। तो खैर ये तो एक छोटा सा मजाक था, आप लोग कभी ऐसा मत करिएगा कि अपने टीचर्स को शूट करने की इच्छा मन में लाएं। सो ये हमारी प्रगति हो रही है जिस चीज को हम लोग देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस चीज को देखा जाता है। ड्रग्स, जैसे हम बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया भर में, और भारत में तो बहुत ज्यादा हो गई है। हम आपको बताएं, हमें कॉलेज में गए थे जहां पर हमें लेक्चर देना था। सो हम कॉलेज में लेक्चर हॉल में एंटर कर रहे थे, वहां पर टॉपिक अलग था, लेकिन प्रिंसिपल ने हमसे कहा कि सर आप ड्रग्स पर जरूर बोलना। सो हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हर हफ्ते में दो स्टूडेंट्स को कॉलेज से निकाल देता हूँ ड्रग्स के प्रॉब्लम के लिए, तो आप कृपया बोलिए। हम जब गए तो वहां पर उस हॉल में 250 बच्चे बैठे थे, 250 स्टूडेंट, सब प्रॉपर सूट वूट, ये बहुत अच्छा कॉलेज था, सो प्रॉपर सूट वूट टाई वाई सब लगाकर बैठे हैं 250 बच्चे, लेकिन सबके मुंह ऐसे। हमने प्रारंभ किया और हमने एक जोक मारा, कोई हंसा नहीं। आप सोचिए कि आप कहीं पर जाओ किसी को जोक सुना और कोई हंसे ही नहीं, तो आपकी क्या स्थिति होगी? आपको लगेगा मैं किसको लेक्चर दे रहा हूं, हम केवल स्टूडेंट को दे रहे हैं, जानवरों को दे रहे हैं या पत्थरों को दे रहे हैं। सो इस तरह से तो लोग सब ड्रग एडिक्ट्स। सो ये ड्रग्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए समाज में इस समय है, और कई कई लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, और इसके कारण समाज के अन्य जगहों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे डिवोर्सेस होना ये बड़ा कॉमन है, सुसाइड्स होना ये बड़ा कॉमन है जापान में 22,500, भारत का तो पूछिए ही नहीं। 2016 का हमारे पास फिगर है कि इंडिया में 230,314 लोगों ने एक साल के अंदर सुसाइड किया था, और ये रिपोर्टेड है, कई तो रिपोर्टेड होते ही नहीं है, भारत में पता ही नहीं चलता क्या हुआ। तो आप सोचिए कि ये स्थिति है, 230,314 लोगों ने केवल सुसाइड कर लिया था। हम लोग कह रहे कोरोना से 2,00,000 लोग मर गए, 4,00,000 लोग मर गए 2 साल में, लेकिन ये तो भारत में इतने सारे सुसाइड से मर रहे हैं। तो बैंगलोर जैसे शहर में ये तो नंबर 1 सुसाइड सिटी ऑफ इंडिया हो गई। बैंगलोर पहले बहुत अच्छी सिटी थी, गार्डन सिटी कहलाती थी, फिर वो पब सिटी हो गई, फिर आईटी सिटी हो गई, और अब सुसाइड सिटी ऑफ इंडिया है। सो इसको सब जानकर हमें देखना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, आगे हमारी जो प्रगति है वो सही दिशा में है या नहीं है, ये हमें जानना चाहिए। जैसे प्रगति करना अच्छी बात है, तेजी से जाना अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए। आपको गाड़ी दे दी गई है, आप गाड़ी चला रहे बड़ी तेजी से, डायरेक्शन ही सही नहीं है। सो हमारी प्रगति जो हम लोग कर रहे हैं, इसको हमें इन सब चीजों को, ये फैक्ट्स जो भी हमने आपके सामने प्रस्तुत किए, इनके आधार पर हमें सोचना चाहिए हम कहां जा रहे हैं, सही दिशा है या नहीं है हमारी। तो ये हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बढ़ते जाएंगे गलत दिशा में और भी नुकसान होता जाएगा। अब हम व्यक्तिगत तौर पर बात करते हैं, पर्सनली आपके, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको जीवन में और भी कुछ करना चाहिए था, अभी बहुत कुछ किया नहीं है और भी कुछ करना था, या फिर कभी ऐसे लगता है कि मेरा जीवन इस समय कंट्रोल में नहीं है मेरे, या फिर कभी कभी जैसे होता है कि मैं बहुत मूडी हूँ, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता हूँ, या बहुत अकेलापन लगता है मुझे, या कभी कभी पता ही नहीं चलता क्या करना है। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हमें विश्वास है कि आप सबको भी कभी ना कभी ये सब अनुभव हुए होंगे, कि आपको लगता होगा कि कैसे कैसे इस चीज को हम लोग हैंडल करें। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन का वश में ना होना, अनकंट्रोल्ड माइंड। सो अनकंट्रोल्ड माइंड इट लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस। So, सारी चीजें हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं डिप्रेस हो जा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ये सब अनकंट्रोल्ड माइंड का फल है। सो इसीलिए ये चीजें हमें पक्का विश्वास है बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा जो हमने अभी अभी कहा। सो इसलिए माइंड को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हमारे लिए है। सो अनकंट्रोल्ड माइंड स्ट्रेस को उत्पन्न करता है, और स्ट्रेस से क्या होता है आपको कुछ बताते हैं। कैलिफोर्निया में एम्प्लॉयज $1 बिलियन एक साल का खर्चा करते हैं, किस लिए? मेडिकल और लीगल फीस में, जो कि स्ट्रेस से उत्पन्न होता है। मतलब उनको इतना स्ट्रेस है कि उनको बार बार लीगल हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए। $1 बिलियन $1 बिलियन केवल खर्चा हो रहा है उनका, बस मेंटल स्ट्रेस से। 1,000 अमेरिकन मर्डर्ड एट वर्क प्लेस ड्यू टू मेंटली स्ट्रेस्ड आउट एंड डिस्ट्रंगल्ड एम्प्लॉय. सो वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, दूसरे का मर्डर कर दिया. ये सब चल रहा. आगे आप देखना चाहेंगे कि 1 मिलियन वर्कर्स अमेरिका में एब्सेंट रहते हैं हर रोज ऑन एन एवरेज वर्क डे, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रेस है. ये हम अमेरिका के फिगर्स क्यों दे रहे हैं? आपको लग रहा होगा भाई भारत के बताइए, क्योंकि अमेरिका को हम लोग बहुत ऊपर मानते हैं. हम लोग सोचते हैं अमेरिका पहुंच जाना बस जीवन की सफलता है. सारे स्टूडेंट्स अमेरिका जाना चाहते हैं, सारे वर्क करने अमेरिका जाना चाहते हैं. पैसा मिलता है वहां, लेकिन पैसा मिलता है मगर और क्या मिलता है ये भी देख लीजिए. इसीलिए कहा गया मेरा भारत महान. भारत में बहुत कम होता है ये सब चीजें. तो ये सब फल है अनकंट्रोल्ड माइंड का. और अब हम देखते हैं कि जब हमारा मन वश में नहीं होता क्या क्या ये कर सकता है. सबसे पहली चीज, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि हम ये कर सकते हैं, चाहे वो स्टडीज में हो, स्पोर्ट्स में हो, या किसी भी फील्ड में हो, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम कर सकते हैं. अनकंट्रोल्ड माइंड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं रहता हमारे अंदर. दूसरी चीज, लोगों का ट्रस्ट चला जाता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट. लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं जब आप ऐसे रहते हो. इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको देते हैं कि हम कई साल पहले एक कॉलेज में जा रहे थे. तो वहां कॉलेज में जब हमने प्रोग्राम किया, उसके बाद कई लड़के मिलने के लिए आए हमसे. कई स्टूडेंट्स इस समय भी जुड़े रहते हैं उनकी समस्याओं के लिए. कल हमने आपको वैसे एक ईमेल आईडी भी दिया था कि आप अगर कोई समस्या हो, आप संपर्क करना चाहें तो आप कर सकते. सो खैर, ये स्टूडेंट आया हमारे पास क्लब प्रोग्राम के बाद और उसने कहा, सर एक मदद चाहिए मुझे. हमने कहा बताइए क्या कर सकते हैं. सुनने का मेरे पास रहने की जगह नहीं है, थोड़ा आप तो इतने सारे स्टूडेंट्स को जानते हो, किसी को कहिए कि मुझे रहने की जगह दे. हमने कहा क्यों, क्या हो गया, तुम कहाँ रहते थे? तो उसने कहा हॉस्टल में. तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले हॉस्टल वालों ने निकलने को बोल दिया, रूम खाली करने को कहा है. हमने कहा क्यों? उसने कहा हॉस्टल की फीस नहीं भरी. हमने कहा आपको कुछ तकलीफ हो, आपके पेरेंट्स पुअर हो तो हम मदद कर सकते हैं. उसने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे पेरेंट्स पुअर नहीं है, मेरे पिताजी तो बहुत भेजते हैं पैसे. तो फिर क्या हुआ? बोले वो सारा पैसा सिगरेट में उड़ा दिया. तो बताने लगा, अच्छे घर का लड़का था, बताने लगा कि जब आया तो उसको आदत नहीं थी, सिगरेट की आदत लग गई. फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि इतना सिगरेट पीता था, जो पैसा आ रहा उसमें खत्म करना, फिर अपने फ्रेंड से मांगता, यार जरा 100 रुपया दे, 200 रुपया दे. फिर वो मांग मांग कर सारों से अपना संबंध खराब कर लिया, कोई उस पर विश्वास नहीं. तो इस तरह उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कॉलेज वालों ने कह दिया कि बाहर जाओ, फ्रेंड्स उसको रखने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसको लोन नहीं दे रहा है, और पिताजी को फोन करके बोल नहीं सकता कि मेरा सिगरेट का खर्चा बढ़ गया, जरा पैसा ज्यादा भेजो. तो ऐसी स्थिति में हमसे वो मिला था. फिर हम जो भी उसकी मदद कर सके हमने निश्चित किया, क्योंकि हमारा तो कर्तव्य है कि हम मदद करें. लेकिन ये स्थिति होती है, लॉस ऑफ ट्रस्ट चला जाता है, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर से हट जाता है. कभी कभी व्यक्ति पागलपन पे आता है, कभी अपने आप का नुकसान करता है, कभी परिवार का, कभी समाज का नुकसान कर देता है. एक बार इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, टीवी में देख रहा था एक व्यक्ति बड़े अच्छे से, और फिर उसमें इंडिया हार गई. जैसे इंडिया हारी उसने अपना टीवी उठाकर तोड़ दिया. वो कंट्रोल नहीं कर पाया, डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस होता है, हाइपरटेंशन, डेंजरस डिजीजेस. हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो वीक हो जाता है. कैसे? हम सोचते कल से करेंगे, कुछ भी हो जाए कल से मैं ये करूंगा, 2 दिन बाद सब खत्म. क्यों? मन वश में नहीं है. तो ये अनकंट्रोल्ड है. और हम करते क्या हैं? अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, हम उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, अब ये बड़ी अच्छी चीज है कि इसे हमें जानना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग कंट्रोल करने के लिए. सो जब मन वश में नहीं होता, कुछ करना है, तो व्यक्ति शराब पीने लगता है कि चलो शराब पीने से थोड़ा सा अच्छा लगेगा. हमने एक बार किसी व्यक्ति से पूछा, भाई तुम शराब क्यों पीते हो? बोले जब मैं खुश होता हूं तब पीता हूं. सो मैंने बोला, लेकिन हमने तो सुना है कि लोग दुखी होते पीते. बोले दुखी होता तब भी पीता हूं. तो हमने कहा दुखी होते तब भी पीते और सुखी होते तब भी पीते? बोले हाँ. तो मतलब केवल एक मन को वश में, मतलब कारण चाहिए बस पीना है. सो अल्कोहल होता है, और क्या करते हैं हम लोग, ड्रग्स लेते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, झगड़े करते हैं, मर्डर्स होते हैं, रेप्स होते हैं, सुसाइड होते हैं. ये सब क्या है, ये सब अनकंट्रोल्ड मन के कारण है. अब फिर हम उसमें सोचते हैं कि हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, कैसे होगा. तो सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, मन को वश में करना है, कंट्रोल्ड माइंड. सो बिफोर, अगर हम लोग कंट्रोल माइंड को समझे, इससे पहले हम ये समझ लें कि किसका मन कंट्रोल में हो रहा है, हमारा मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं. तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है. हमारे जब हमने मंत्र ऑफ लाइफ का पोस्टर दिया था, उसमें एक ये क्वेश्चन था, मैं कौन हूं. तो ये प्रश्न होना चाहिए, हमें जानना चाहिए कौन मन को वश में करना चाह रहा है. तो 20वीं सदी के प्रारंभ में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे शरीर का पूरा अपने शरीर मानव शरीर का एक एनालिसिस किया, और उन्होंने जाना कि हमारा शरीर केमिकल से बना है, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस, वाटर कंटेंट, अदर सब्सटेंस एक्सेट्रा, और इस सबका कॉस्ट निकाला. तो उस समय उस सबका कॉस्ट आया 210 रुपया. आज भी केमिकल्स इतने ही सस्ते हैं. सो क्या आपको लगता है हमारे शरीर की कॉस्ट 210 रुपया है? अगर हम ये बताएं कि आपके पेरेंट्स को बोले कि भाई अपने लड़के को 210 रुपए में बेच दो, 300 में बेच दो, कोई बेचेगा? तो क्या हमारी वर्थ केवल 210 है, हम लोग केवल केमिकल से बने हैं? बिल्कुल नहीं. इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमारी वर्थ बहुत ज्यादा है. भगवद गीता में भगवान बताते हैं, देहिनुस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति. कि जिस तरह बचपन से बड़ा होता जाता है व्यक्ति, फिर वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति रहता है. ऐसा नहीं होता बचपन में हम अलग व्यक्ति थे, अब अलग हो गए, आगे अलग होंगे. एक ही व्यक्ति, एक ही आत्मा. तो भगवान कहते हैं इसी तरह जब मृत्यु होती है तो वही आत्मा दूसरे शरीर में जाती है. और एक बहुत सुंदर उदाहरण भगवान देते हैं, वो कहते हैं वासांसी जीर्णानि. जैसे हम कपड़े पहनते हैं अलग अलग, लेकिन व्यक्ति वही होता है. इसी तरह अलग अलग शरीर लेते हैं, व्यक्ति वही होता है. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, आशा है इस व्यक्ति को आप सब जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर. तो अब इसमें चित्र में आप देखिए, उन्होंने अलग अलग कपड़े पहने हैं, लेकिन अलग अलग कपड़े पहनने से व्यक्ति नहीं बदल गया. कहीं उन्होंने टाई लगाई है, कहीं नीले रंग के पहने हैं, कहीं टोपी पहनी है, इससे व्यक्ति नहीं बदल गया, व्यक्ति वही है. तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि हर ये जो शरीर है हमारे, ये कपड़ों की तरह है, लेकिन व्यक्ति आत्मा वही है. तो इसको हमें बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए. ये हमारा जो शरीर है एक रथ की तरह है. अब हम मन को वश में कर रहे हैं तो मन है कहाँ, इसको ढूंढ लीजिए. अभी तो ये जो हमारा शरीर है ये रथ की तरह है. इसके जो 5 घोड़े हैं ये हमारी इंद्रियां हैं, और जो लगाम है वो मन है. आप सोच रहे हो कि मन की बात हो रही है, घोड़ों को कहां से ले आए, ये रथ को कहां से ले आए. इसी से समझ में आएगा. ये जो लगाम है, इंद्रियों को पकड़ने की लगाम, ये मन है. और जो इसको पकड़े हुआ है वो बुद्धि है, और जो बैठा है रथ में वो आत्मा है. इसको एक मन में बिठा लीजिए. क्या रथ है? इंद्रियां जो है घोड़े हैं, मन जो है वो लगाम है, बुद्धि ने लगाम को पकड़ा हुआ है, और आत्मा उस रथ पर विराजमान है. तो मन का कार्य क्या है? अभी हमने चर्चा की हम कौन हैं. हम लोग शरीर से परे आत्मा हैं, और वो आत्मा बारंबार शरीर लेना पड़ता है. ऐसा नहीं कि एक ही बार शरीर है हमारा, मनुष्य शरीर हो गया, बस आगे कुछ नहीं होगा. बिल्कुल नहीं, बारंबार शरीर लेना होता है. तो इसीलिए मन का क्या रोल है? अब मन का रोल ये है, भगवान भगवद गीता में बताते. देखिए भगवद गीता ये कोई केवल ऐसी ग्रंथ नहीं है कि उसको अगरबत्ती दिखा दें आप. सीखने वाला है, जीवन जीने वाला है. जीवन की मैनुअल है भगवद गीता. तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं बंधुरात्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने नहीं जीता उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। आप क्या चाहते हो, मन आपका शत्रु हो या मन आपका मित्र हो? मन शत्रु भी हो सकता है और मन मित्र भी। कैसे? अब एक उदाहरण देखिए, जो चाकू होता है, चाकू अच्छा होता है या बुरा होता है? अगर आप लोग ऐसे सोचें तो आपको मन में आएगा कि चाकू बुरा है या अच्छा है। चाकू ना बुरा है ना अच्छा है, चाकू का उपयोग उसे अच्छा और बुरा बनाता है। जैसे जब यही चाकू किसी डॉक्टर के, सर्जन के हाथ में होता है तो किसी की जान बचाता है, और यही चाकू किसी हत्यारे के हाथ में होता है तो किसी की जान ले लेता है। अब बताइए, चाकू अच्छा है या बुरा? चाकू ना अच्छा है ना चाकू बुरा है, उसका उपयोग उसे अच्छा और बुरा करता है। इसी तरह हमारा मन है, मन अच्छा है कि बुरा है? मन ना अच्छा है ना बुरा है, उसका उपयोग उसे अच्छा और बुरा बनाता है। सो इसलिए हमें थोड़ी सी टेक्निक समझनी चाहिए कि हम वश मन को कैसे वश में कर सकते हैं, क्या टेक्निक है, उसको हमें अब समझ लेना चाहिए। सो इसको अगर हमने ध्यान से समझा, सो अभी तक हमने इतने सारे जो अभी चर्चाएं की हैं कि कैसे मन का प्रभाव हो रहा है, आत्मा के रूप में हमें कैसे मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, सो अब यहाँ पर टेक्निक्स हम सीख रहे हैं मन को वश में करने की। सो सबसे पहली टेक्निक है, मन को अगर वश में करना है, Do not allow your senses to wander. अपनी इंद्रियों को इधर उधर भागने मत दीजिए, घोड़ों को इधर उधर भागने मत दीजिए। रथ याद रखिए, मन से घोड़ों को दबाकर पकड़ कर रखना है। अगर भाग गए घोड़े तो फिर मन वश में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को इधर उधर मत भागने दीजिए। मतलब हम लोग जो चीज खाते हैं, हम लोग जो चीज देखते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो सुनते हैं, इस सब का प्रभाव मन पर होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ऐसा नहीं हमने कुछ भी देखा कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं, बहुत फर्क पड़ता, मन में इंप्रेशन आ जाता है और फिर आगे चलकर वो तकलीफ देता है। इसीलिए मन को गलत कार्यों से पहले निकालना चाहिए। और फिर कैसे, जैसे अर्जुन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर महाभारत का युद्ध का चित्र है। सो अर्जुन भी बहुत दुविधा में था, लेकिन भगवान ने उसकी दुविधा को दूर किया और अर्जुन ने एक प्रश्न किया भगवान से कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म, कि हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, मुझसे वश में नहीं होता, क्या करूं? तो फिर कृष्ण ने कहा, दो बातें बताता हूं तुम्हें, बस ये करो, निश्चित तुम मन को वश में कर लोगे। तो क्या दो बातें बताई उन्होंने? कहा, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न च गुह्यते। कृष्ण ने कहा, कुछ चीजों का अभ्यास करो और कुछ चीजों को बंद करो। अगर कुछ चीजों का अभ्यास करोगे और कुछ चीजों को बंद करोगे, इन दोनों के बैलेंस से मन आपका नियंत्रण में रहेगा। तो कैसे, क्या है, क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहली चीज, हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। अब हम अभ्यास की बात कर रहे हैं पहले, फिर हम बात करेंगे क्या छोड़ना, क्या बंद करना है और क्या करना। तो क्या करना है, तो हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जैसा संग वैसा मन। हम जैसे लोगों का संग करेंगे, मान लीजिए कि आप शराबियों का संग करते हैं, आपको शराब पीने की कोई इच्छा नहीं है, एक दिन जाएंगे, दो दिन जाएंगे, तीन दिन जाएंगे, चौथे दिन हो जाएगा, यार थोड़ा एक पैग मार लेता हूं, देखूं तो क्या होता है। तो इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे लोगों का संग कीजिए, उन लोगों का जो भगवान से जुड़े हैं, जो अच्छे पथ पर हैं, उनका संग कीजिए। दूसरी चीज, ये संग कैसे है कि जैसे मान लो आप गार्डन लगा रहे हो, तो गार्डन जब बनता है तो उसको बड़ी फेंसिंग की जाती है, अच्छा प्रोटेक्शन दिया जाता है। सो हम हमारे जीवन के गार्डन को प्रोटेक्ट करते हैं अच्छे लोगों के संग से। इसलिए आप कॉलेज में हो, कहीं भी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आप याद रखिए कि आपको अच्छा संग जरूरी है और फिर ऐसे लोगों के साथ बड़ी मित्रता करनी चाहिए हमें। सो ये पहली चीज है कि हम कैसे मन को वश में करें। तो अच्छा संग अभ्यास न तो कौनते या अभ्यास होना चाहिए हमारा, और भगवान के विषयों में मन को लगाना चाहिए, ये भी अभ्यास है। सो ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में सुने, जीवन को समझने के लिए भगवद गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ें। देखिए भगवद गीता में क्या दिया गया है, यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें क्या है, खाना दिया गया है, स्पोर्ट्स दिया गया है, सोना दिया गया है, कुछ कार्य दिया गया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हमें सब कुछ नियमित करना चाहिए, आहार या फिर विहार या फिर स्वप्न या कार्य, ये सब नियमित होना चाहिए। तो ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं। और ये जो नियमित जीवन है, तो ये नियमित जीवन हमारे लिए एक चाबी की तरह है जो हमारे मन को नियंत्रण में करती है। रेगुलेटेड लाइफ इज अ की टू माइंड कंट्रोल। सो इसलिए हमें बहुत ध्यान से क्या हम खाते हैं। देखिए हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, गए मार्केट में अच्छा दिखा खा लिया, कैसे भी सो जाते हैं, कैसे भी काम करते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, बड़े ध्यान से करो क्या खा रहे हो, उस पर ध्यान रखो, नहीं तो मन वश में नहीं आएगा। इसीलिए मन को वश में करना है। तो चार आपको हम इस समय ऐसे नियम बता रहे हैं कि जिसके द्वारा आप बहुत अच्छी तरह अपने मन को वश में कर पाएंगे। और इससे पहले हम आपसे ये भी कहेंगे कि जैसे हम बता रहे थे कई विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़िए। और जैसे अभी कुछ ग्रुप्स भी बन रहे हैं तो उसमें अगर आप जुड़ेंगे तो आपके कोई प्रश्न होंगे आप भेज सकोगे व्हाट्सएप इत्यादि पर, हम प्रयास करेंगे उत्तर देने का। क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इसमें बड़ा कम समय होता है। अभी जैसे हम आज आपको अभी प्रोग्राम दे रहे हैं, अभी इससे पहले हम एक क्लास दे चुके हैं, 6:30 बजे खत्म हुई, 7 बजे अब आपका शुरू हो रहा है, आपका 8 बजे खत्म होगा, 8:30 बजे हमारी दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। तो इसमें समय कम होता है कि हम आपसे प्रश्न उत्तर कर सकें, बहुत अच्छे से आपको समझा सकें। तो इसलिए आप ग्रुप ज्वाइन करिए, ईमेल पर भेजिए, आराम से हम लोग संपर्क में रहेंगे और आपसे भी प्रश्न उत्तर होता रहेगा। तो चार नियम हम आपको बता रहे हैं मन को वश में करना है। तो जीवन में जैसे अभी भगवान ने भगवद गीता में कहा कि हमारा आहार नियमित होना चाहिए और हमारा सोना नियमित होना चाहिए, हमारा कार्य नियमित होना चाहिए, हमारा स्पोर्ट्स एंजॉयमेंट विहार वो भी नियमित होना चाहिए। तो इसीलिए चार चीजों को जरूर कीजिए जीवन में। पहला सिद्धांत है, अब हम आपको चार सिद्धांत प्रिंसिपल्स दे रहे हैं। पहला है कि हमें इलिसिट रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, अवैध संग नहीं करना चाहिए, पुरुष स्त्री इत्यादि इनका संग अगर होना है तो विवाह के बाद विवाह करना चाहिए, अन्यथा नहीं। किसी भी प्रकार का नशा नहीं कीजिए, ड्रग्स लेना, शराब लेना, अपने जीवन को खराब करना, सारा शरीर खराब हो जाता है, चेतना खराब हो जाती है, आपका करियर बर्बाद हो जाता है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है तो ले लेते हैं, तो नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। और फिर मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अभी ये कोरोना की इतनी सारी प्रॉब्लम आप देख रहे हो, क्या क्या खाने लगे थे इसी कारण से ये सारा हो रहा। तो इसीलिए खाना का भी कंट्रोल करना चाहिए, और साथ साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इसके द्वारा ही इन चीजों को, चार नियमों का पालन आप जीवन में जरूर कीजिए मन को नियंत्रण करने के लिए। सो इनको अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरह हम आगे बढ़ सकेंगे। अब मीट ईटिंग की अगर बात करें तो बहुत क्रूरता है ये, देखिए कैसे टांगा जाता है मुर्गियों को मारने के लिए, कैसे क्रूरता से मारा जाता है, और हम लोग अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए उनको खाने लगते हैं। मनुष्यों को तो जानवरों का रक्षण करना चाहिए लेकिन हम लोग खाते हैं। अगर वैज्ञानिक तरीके से देखना चाहते हैं, कोई कहते नहीं ये सब गलत है, ये आपकी भावना है, हमारी कोई भावना नहीं है, विज्ञान ने प्रूव किया है कि मनुष्य शरीर बना ही नहीं है मांस खाने के लिए। यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट देख लीजिए, कार्निवोर्स एनिमल और हर्बिवोर। कार्निवोर मतलब जो मांस खाने वाले हैं और जो अन्य प्राणी हैं, उनकी तुलना की जाए तो मनुष्य का शरीर मांस खाने वालों के समान नहीं बना है। और फिर शास्त्र भी यही कहता है कि अगर आप इस तरह से कार्य करते हो तो फिर आपको उसका आगे दंड मिलेगा। और जैसे हम अभी बता रहे थे कि ये इतनी सारी पूरे दुनिया में प्रॉब्लम हुई है, हम लोगों ने खाना बंद नहीं किया, तो आपको एक और उदाहरण देते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। ये जो आप चित्र देख रहे हो ताइवान का चित्र है। यहाँ लोगों का एक बहुत अच्छा फूड है जो खाते हैं वो लोग, और वो है डेड फीटस। जब बच्चा माँ के गर्भ में मर जाता है तो उसको हॉस्पिटल्स जो हैं वो बेचते हैं, और उसको बॉटल में बंद किया जाता है $50 से $70 तो उसको किया जाता है। कैसे खाते हैं ये बॉटल में बंद है वो, और देखिए कैसे काटा जा रहा है। और फिर ये फीटस है। आई एम सॉरी मैं आपको ऐसे चित्र दिखा रहा हूँ, हमें तो देखने में भी बहुत घबराहट होती है कि क्या स्तर आ गया है लोगों का, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे से उसको खाया जाता है। ये देखिए ये स्थिति है। तो ये क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने सोचा मैं जो चाहे कर सकता हूं, मन वश में रहेगा। बिल्कुल नहीं। भारत में कम से कम हमें इस चीज को त्यागना चाहिए। हमारी सभ्यता ही नहीं है ये, तो हमारे ऊपर थोप दिया गया है। और फिर साथ साथ शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसके भी शास्त्रों में बहुत बहुत ज्यादा गलत प्रभाव दिए गए हैं। और अवैध संग भी नहीं करना चाहिए विवाह के अतिरिक्त। ये चार नियम, ना तो जुआ खेलें, इन चार नियमों को आप जरूर पालन कीजिए जीवन में। तो अपनी जो इंद्रियां हैं जिनको वश में करेंगे मन को वश में करने के लिए, तो इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या करना है आपको? आपको बहुत अच्छे भजन गाने सुनने की इच्छा है, सुनना चाहिए, लेकिन भजन सुनिए। और हो सके तो रोज मंदिर आइए, भगवान के दर्शन कीजिए। कोई उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, मंदिर जाने से कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा कुछ मिलता ही है। आप मंदिर जाते हो कोई प्रसाद दे देता है आपको, तो इसलिए मंदिर में कोई नुकसान नहीं है, मंदिर जाइए। आजकल ऐसा प्रचार किया जा रहा है कई लोगों के द्वारा, मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही बैठ कर कीजिए। क्यों नहीं जाना है? क्या भगवान मंदिर में नहीं है? अगर सब जगह है तो मंदिर में भी है। और इसीलिए ये प्रचार करते करते हम लोग को 70 साल लग गए एक मंदिर बनाने के लिए, उस जगह पर जहां भगवान राम का जन्म हुआ। और अभी तो बन रहा है, खैर अब तो बन ही जाएगा। तो ये कितना गलत प्रचार किया जा रहा है, और हम लोगों के ऊपर वो प्रभाव हो रहा है। हमें लगता है कोई जरूरत नहीं है हमें मंदिर जाने की। नहीं, जाना चाहिए। हमारी चेतना बदलती है, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और अगर हमें खाना है तो हमें जो भी है भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मुझे अर्पण करो। क्या अर्पण करो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई फल अर्पण कर दो, कोई पत्ता अर्पण कर दो, कोई फूल अर्पण कर दो, जल अर्पण करो। भगवान ने अंडम मीटम मटनम नहीं कहा है कि अंडम लाओ, अंडा लाओ, मुझे ले मीट लाओ। नहीं, सारा सरल भोजन लाइए, अर्पण कीजिए और खा लीजिए। आपकी इंद्रिय शुद्ध हो जाती हैं उससे। और साथ साथ हमें भगवान के नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। हमारी संस्था में हम लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हम लोग जप करते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको फीडबैक का लिंक भेजा जाएगा, सो आपको लिंक भरना है, क्योंकि उससे अटेंडेंस होगा। जस्ट 5 मिनट में आपको लिंक भेजा जाएगा। सो भगवान के नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए, और इसका प्रभाव देखिए क्या होता है। हम लोग भारत में रहकर भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मंत्र के महत्व को नहीं समझा है। मंत्र मतलब मन को, मन का उद्धार करने वाला, उसको मंत्र कहते हैं। और आपको कुछ उदाहरण दिखा रहे हैं। ये लोग हैं जिन्होंने इस मंत्र का जाप किया, रोज करते हैं, और क्या क्या लाभ हुआ उनको जीवन में। सो ये हैं जीन, जो यंगेस्ट डायरेक्टर हैं। उस समय पर जब वो डायरेक्टर बने तो 29 साल के थे, अब तो काफी बड़े हो गए हैं। सो उस समय थे, और उन्होंने कहा था कि सब कुछ मेरे जीवन में होना शुरू हो गया जब मैंने हरे कृष्ण चैंटिंग शुरू किया। ये अल्बर्ट फोर्ड है, फोर्ड कंपनी के मालिक, ये कहते हैं कि चैंटिंग हरे कृष्णा हैज मेड अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट इन माय लाइफ। ये मिस्टर एंडी देसाई हैं, ये कहते हैं कि आई हैव बीन चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर मेनी इयर्स, नेवर फाउंड एनीथिंग मोर प्लेजरेबल, जस्ट ट्राई टू चैंट 5-10 मिनट्स अ डे एंड यू विल सी द डिफरेंस। ये मफतलाल हैं, सीईओ हैं मफतलाल फैब्रिक्स के, ये कहते हैं चैंटिंग हरे कृष्णा हैज हेल्प मी फेस ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड। सो हम बहुत कॉन्फिडेंस चाहते हैं, मन को पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, यस हरे कृष्ण का जप है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक डच मॉडल है और जिनके चित्र आप देख सकते हैं इस मैगजीन पर, और इस तरफ आप उनको देख सकते हैं कि कितने प्रसन्नता से वो भगवान का नाम ले रही, कीर्तन कर रही है भगवान के नाम का। तो वो लिखती हैं कि चैंटिंग इज हेल्प मी गिव अप बैड हैबिट्स, इट चेंज्ड माय विजन ऑफ थिंग्स, जितनी भी बुरी आदतें थी चैंटिंग के द्वारा मैंने छोड़ दी। और एक मॉडल है, यूरोपियन मॉडल है विकी, सो उन्होंने लिखा बाय स्टार्टिंग टू चैंट हरे कृष्णा आई फील ट्रेमेंडस हैप्पीनेस, बहुत आनंद आता है। ये मार्को फेरिनी है, इटली के टॉप फर्नीचर डिजाइनर है, और ये कहते हैं चैंटिंग मेक्स मी फील क्लोज टू गॉड। सो एक रिसर्च किया गया चैंटिंग के ऊपर, मास्टर ऑफ सोशल सर्विस प्रोग्राम एट फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी पर, और उसमें कहा गया कि महामंत्र ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस स्ट्रेस डिप्रेशन एंड द मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड कंसिडरेबली इंक्रीजेस मोड ऑफ गुडनेस। सो ऐसे कई लोग हैं जो ये चैंटिंग करते हैं, ऐसे हम आपको बहुत सारे लोगों का बारे में बता सकते हैं, समय कम है इसीलिए हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। ये डॉक्टर डोनाल्ड टक हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वेस्टर्न कैंटकी यूनिवर्सिटी, इन्होंने लिखा रिसर्च किया और कहा कि एज चैंटर्स प्रोग्रेस फ्रॉम वन लेवल टू डीपर लेवल दे बिकम रियलिस्टिक मोर टॉलरेंट एंड मोर एनर्जेटिक। और ये रमेश लाल हैं, सो ये भी चैंटिंग करते हैं और उनको बहुत आनंद आता है। सो ऐसे शास्त्र में भी बहुत उदाहरण है, अम्बरीश महाराज का उदाहरण है जिन्होंने अपने मन को वश में किया भगवान की भक्ति के द्वारा। तो इसी तरह हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में मन को वश में करें, इंद्रियों को वश में करें, मन को मंत्र में लगाएं, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, अच्छा संग हो हमारा, ये सब मिलकर हमें मदद करेंगे मन को वश में करने का। और उसका बेनिफिट्स क्या होगा, हमारा जो इंटेलिजेंस बुद्धि बहुत क्लियर होगी, मन शांत रहेगा, इंद्रियां शुद्ध रहेंगी, हम लोग पीस का अनुभव कर सकेंगे, हमारा कंसंट्रेशन और मेमोरी बहुत बढ़ जाएगा। सो इसीलिए आप सबको अगर बहुत एफिशिएंट और होना चाहते हैं तो जो आज हमने बताया उसका निश्चित पालन कीजिए, और भगवान की भक्ति जो हमारा, हम सब ने भारत में जन्म लिया है और भारत में जन्म लेने का एक महत्व ये है कि हम आराम से भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। सो इस मंत्र को जरूर आप चैंटिंग शुरू कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आप प्रसन्न रह सकते हैं। सो यहाँ जो हमने सवाल लिखे थे इसमें से मैं कौन हूँ, इसका थोड़ा सा उत्तर आज हमने दिया, मन को नियंत्रण कैसे करना है, शाश्वत सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अब अगला सेशन होगा अगले शनिवार को, जिसमें अन्य उत्तर आपको दिए जाएंगे। तो हम लोग शनिवार को चर्चा करेंगे क्या सच में भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, और फिर अंतिम सेशन में हम चर्चा करेंगे जीवन का लक्ष्य क्या है। सो ये आज की हमारी प्रेजेंटेशन थी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप सबसे हमने जैसे यहाँ पर प्रार्थना की कि आप सब चैंटिंग हरे कृष्णा के लिए जुड़े हैं, तो इससे पहले कि आप फॉर्म भरें और या कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग शुरू करें, हम एक चीज कहना चाहते हैं कि जो चैंटिंग का अनुभव आपको नहीं है, थोड़ा अनुभव हो सके इसके लिए अभी जो आप लोग फॉर्म भरेंगे, सो उसमें आप लोग जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनको हम एक और लिंक भेजेंगे जिसके द्वारा हम ये जो चैंटिंग होता है, मेडिटेशन होता है, इसको ऑनलाइन करेंगे मेडिटेशन। और आप सब मेडिटेशन में भाग लेंगे तो उसका असर देख सकेंगे, क्या अनुभव आपको होता है, कितनी शांति मिलती है। तो आप में से जो लोग मेडिटेशन करना चाहेंगे आप लिख सकते हैं फीडबैक में, आपको फीडबैक फॉर्म में फीडबैक एक सेक्शन है जिसपे आप कुछ लिखना चाहें तो उसमें लिखिए कि आप चैंटिंग मेडिटेशन में आना चाहते हैं। सो हम आपको लिंक भेजेंगे, हम खुद आप सबके साथ बैठकर उस मेडिटेशन को आपको कराएंगे कैसे मेडिटेशन करना है, ठीक है। सो कल का भी सेशन जो हमारा था, अगर आप यहाँ चैट में देख रहे हैं कुछ लोग नहीं देख पाए थे, YouTube पर है, आपको लिंक भेज दिया जाएगा उसका, आप देख सकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे पास ज्यादा समय तो नहीं है, फिर भी एक दो क्वेश्चन आपके हम लेना चाहेंगे, अगर आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहें। इस समय जिनके भी हाथ ऊपर हैं उनके सबके हाथ लो कर रहे हैं, और अब जो कोई भी पूछना चाहेंगे वो लोग प्रश्न, एक दो भक्त, एक दो डिवोटी केवल हाथ ऊपर कीजिए, एक दो स्टूडेंट्स, ज्यादा का समय नहीं है। सो ओके, यहाँ पर इस समय 10-15 स्टूडेंट्स चाहते हैं प्रश्न पूछना, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप लोग प्रश्न पूछना चाहें, लेकिन जैसे हमने बताया एक फोरम और अलग क्रिएट कर रहे हैं प्रश्नोत्तर के लिए, सो आप लोग ग्रुप में जुड़ेंगे वहां पर क्वेश्चंस हो सकेंगे। ओके, किससे पूछें, सबसे पहले हाथ इसमें उमंग पांडे कहाँ है, उमंग अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उमंग
हरे कृष्णा गुरुजी।
हरे कृष्णा
गुरुजी। और जब मैं कुछ भी काम करने सोचता हूँ और करता हूँ ना, तो हमारे मन में कुछ अलग ही होने लगता है। पढ़ाई भी करता हूँ तो कुछ दूसरा ही चीज आ जाता है मन में, मतलब कि मैं सही से पढ़ नहीं पाता हूँ और सोने भी जाता हूँ।
क्या पढ़ाई करते हो
सर? अभी तो मैं क्लास 9th में हूँ।
9th में, अच्छा ठीक है।
हाँ।
मन नहीं लगता है पढ़ाई में?
लगता है, बट दिमाग में अलग अलग, जब पढ़ने बैठता हूँ या फिर खेलने भी या कुछ भी करता हूँ तो दिमाग में अलग अलग चीज आने लगता है, मतलब कि उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ अच्छे से।
हाँ हाँ, सो इसीलिए क्या करना चाहिए आपको फोकस बढ़ाने के लिए, जैसे हम अभी ये मेडिटेशन की बात कर रहे हैं ना, ये मेडिटेशन बहुत मदद करने वाली है, और हम लोग ये जो सेशन शुरू करेंगे मेडिटेशन का, आप में से बहुत लोगों को मदद मिलेगा। 10 मिनट 15 मिनट केवल मेडिटेशन, ना कोई दवाई खानी है आपको, ना कोई पेमेंट करना है आपको, कुछ नहीं करना है, फ्री एकदम, बस आपको बैठ कर 10 मिनट मेडिटेशन करना है और इतना फोकस बढ़ जाएगा। सो यहाँ आपको लिंक भी दिया जा रहा है चैट बॉक्स में फॉर्म भरने के लिए, कृपया सब लोग फॉर्म भरें, और जीमेल एड्रेस दिया गया iyf.greaternoida@gmail.com, तो आप लोग उस पर कोई भी अपने प्रश्न हो तो लिख सकते हैं। जैसे हमने बताया आप सबके प्रश्न आज नहीं ले पाएंगे, एक दो प्रश्नों को लेंगे निश्चित, लेकिन ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, मगर आप सब कोई भी प्रश्न हो तो आप भेज सकते हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण चीज़, आप जरूर से ये जो मेडिटेशन है उसको छोड़िएगा नहीं, आपको बहुत लाभ होगा। इसी हफ्ते में एक सेशन हम करेंगे मेडिटेशन का, जो आपको सूचना देंगे, मैसेज आएगा, अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको मेडिटेशन का सेशन का जरूर डिटेल आएगा। ओके, एक और हम लेना चाहेंगे, एक दो क्वेश्चन और जिनके हाथ ऊपर हैं, उमंग का हो गया। ओके, नेक्स्ट है वंदना।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। हाँ जी, बताइए, सुनाई दे रहा है
जी। प्रभु जी, मैं थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोधित हो जाती हूँ, तो कैसे मैं मेरा क्रोध को कंट्रोल कर सकूं?
बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि क्रोध हमें क्यों आता है कि जब हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं वो पूरा नहीं होता, क्रोध आ जाता है। जब हम किसी को कुछ कहते हैं वो सुनता नहीं, क्रोध आ जाता है। तो हमारी कुछ चीजें जो आशाएं पूरी नहीं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, वो क्रोध को लाती हैं। तो इसीलिए क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। सो क्रोध को कंट्रोल करने के लिए हमें अप्रिसिएशन को बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आप लोग जीवन में सोचिए कितनी बार, कि दिन में कितनी बार आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो। हम तो आप सबको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप सब ने अपने वीडियो ऑफ रखे हुए हैं, सो बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं हम आपको। लेकिन हम लोग जीवन में कितने लोगों को, आप देखिए दिन में आप कितने लोगों को याद कीजिए, अप्रिशिएट करते हो। सो अगर हमें क्रोध आ रहा है तो हमें दो चीज चेक चेक जरूर करनी चाहिए। एक, अप्रिशिएट करना दूसरों को, और दूसरी चीज, हर एक व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं तो उसके अच्छे गुणों को देखना, बुरों को नहीं। बुरे गुण तो सब में होते हैं, लेकिन अच्छे गुणों को देखना कि इसके अंदर एक अच्छी चीज क्या है। तो आपको अगर क्रोध आता है, आपको हम एक एक्सरसाइज बताते हैं, इसको जरूर कीजिए और आपको बहुत लाभ होगा। वंदना, आपके लिए है कि आपको क्या करना है, आपको हर रोज अगले 15 दिन तक, हर रोज सुबह जब आप अपना कार्य प्रारंभ करो, जहां भी हो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जो भी करो, तो उस समय आपको एक किसी व्यक्ति को देखना है जो आपके फ्रेंड हो, आप जिनको जानते हो या रिलेटिव हो, उनको आपको एक अच्छी क्वालिटी देखनी है और उनको जाकर बताना है कि भाई आपके अंदर ये अच्छी क्वालिटी है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि एक ही व्यक्ति को रोज बताना है जाकर, यानी आप रोज एक व्यक्ति को बोलो जाकर, अरे तुम अच्छा गाते हो, अरे तुम अच्छा गाते हो, अरे तुम अच्छा गाते हो, वो बोलेगा अरे मैं गाना छोड़ दूंगा बाबा, बोलो मत मुझे। सो वो नहीं बता रहे हैं। अलग अलग व्यक्तियों को आप उनमें एक अच्छा गुण देखिए। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। अगले 15 दिन तक बस ये कीजिए और आप देखिए कितना अंतर आप में आ जाएगा। तो दो चीजें, अच्छा गुण देखना और दूसरा निश्चित जाकर उनको अप्रिशिएट करना। ठीक है, ये दो करोगे तो निश्चित होगा। वंदना करके आप हमें बताना, वंदना कैसा आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ओके। सो सचिन कुमार यादव, सचिन कुमार यादव
जी,
अनम्यूट
हरे 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 कृष्ण गुरु जी। गुरु
हरे कृष्ण सचिन।
जी, मैं नेपाल से हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, इसलिए अगर कोई भाषा में त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा
कौन
चाहूंगा।
सी भाषा बोलते हो आप वैसे? नहीं,
मैं 12th क्लास में हूँ सर। गुरु जी,
भाषा कौन सी बोलते हो आप? हिंदी नहीं बोलते तो?
हिंदी तो है, हमारे यहाँ नेपाली खास में है, नेपाली,
अच्छा,
इसलिए।
नेपाल से हो। ओके, बताओ।
जी, मेरा प्रश्न ये था गुरु जी, जैसे कि हम जानते हैं एक दिन ये दुनिया नष्ट हो जाना निश्चय है लगभग, जैसे कि साइंस बोलता है दुनिया एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, फिर भी
हाँ
हम
जी,
लाइफ में बिजनेस, पॉलिटिक्स और टीवी पर आने वाले रोज ये बैड न्यूज के चक्कर में फंस कर पूर्ण रूप में तनाव में रहते हैं। क्यों हम इतने तेजी से
राइट,
खुद को डेवलप कर रहे हैं जबकि सब कुछ नाश ही होना है, कुछ एक दिन के बाद सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, तो क्यों हम इतने तनाव में रहकर जी रहे हैं? क्यों हम इतने कंपटीशन में शामिल हो रहे हैं? क्यों, किसके लिए हम इतना आगे जाना और खुद को डेवलप करना चाहते हैं? गुरु जी, मेरा यही प्रश्न था।
बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं, इसका पहला कारण ये है कि हमें अभी जो हमारे पास है, देखो दुनिया डिस्ट्रॉय होगी ठीक है, लेकिन वो अभी तो नहीं हो रही, वो तो जब भी होगी होगी, साइंस कहता है, नहीं शास्त्र भी कहता होगा, लेकिन ठीक है। हमें पहली चीज ये नहीं पता कि अब जब तक हम हैं, जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इसका सही उपयोग क्या करना है ये हमें नहीं पता। दूसरी चीज, हमारे जीवन में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। हम अपना जीवन जिए जा रहे हैं, किसी ने हमने आजकल, हम गाइडेंस कहाँ से लेते हैं? गूगल से। कोई चीज हो, नेट पे जाओ, गूगल गुरु है आपके लिए। तो क्योंकि, और नेट पे लिखता कौन है आप जानते नहीं उस व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी है तो ना नेट पे जाता है, अरे इसका इलाज क्या है, ये इलाज है। आपको पता है किसने लिखा? कोई डॉक्टर है या किसी ने ऐसे ही लिख दिया, आपने उसको पढ़ लिया। हमारे पास सही मार्गदर्शन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, और सही उपयोग नहीं पता जीवन में कि इस चीजों का क्या करना है, और उसके कारण हमारे जीवन में ये सारे कष्ट हो रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले गाइडेंस लेना चाहिए ताकि जान सके कि ये सब नाश होने वाला है, क्यों इसके पीछे पड़े हो। लेकिन उस नाश होने वाली चीज को, नाश तो बहुत बाद में होगा, जब तक नहीं हो रहा उसका उपयोग तो करो। देखो ऐसा है कि आपके हाथ में कुछ दिया जाए, आइसक्रीम दे दी जाए आपके हाथ में, आइसक्रीम थोड़ी देर में पिघल कर खत्म हो जाएगी ना, तो आप क्या करते हो आइसक्रीम को, पिघल पिघल कर खत्म होने वाली इसलिए फेंक दोगे उसको? नहीं, उसको जल्दी से खा लोगे ना कि पिघलने से पहले खा लें। इसी तरह जगत नाश होने वाला है, सही बात है, लेकिन उसको फेंकने की जगह उसका सही उपयोग हमें सीख लेना चाहिए। और सही उपयोग सीखते हैं जब हमें अच्छा मार्गदर्शन गाइडेंस मिलता है। सो सचिन, हमारा आपसे ये कहना है कि आप सही गाइडेंस में रहो तो बहुत जल्दी इन चीजों से परे रहकर भी इन चीजों का सही उपयोग आप सीख सकोगे। सो हमें इसके लिए क्या सीखना है, हमें इसके लिए कमल की तरह रहना सीखना है। एक कमल का पुष्प होता है, फ्लावर होता है, वो पानी में रहता है लेकिन पानी को टच नहीं करता। इसीलिए हमें इस जगत में रहना है, इस जगत के होकर नहीं रहना, ये सीखना है हमें। और अगर ये आर्ट आपने सीख ली तो फिर जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है सचिन, हरे कृष्णा। अच्छा, हम अभी केवल एक या दो उत्तर और दे पाएंगे, समय हमारे पास बहुत कम है अगले प्रोग्राम से पहले। चंचल, आप कुछ पूछना चाहते हो?
आवाज आ रही है सर मेरी?
हाँ जी।
हरे कृष्णा गुरु जी।
हरे कृष्ण।
सर मेरा गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि बचपन से ही ना मेरा मतलब पढ़ाई लिखाई में उतना दिल नहीं था, तो उसके बाद जाके फिर 11th में आके ना फर्स्ट टाइम मेरा मैं फेल हो गया। देन उसके बाद जाके 12th में दोबारा मैंने एग्जाम दिए कहीं और से, तो वहां पे भी मैं फेल हो गया। तो मैं उसको ज्यादा अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा हार्ड पॉइंट नहीं मानता। उसके बाद जाके लाइफ में मतलब ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए मेरे को। देखो आपसे मैं कुछ छुपाना नहीं चाहूंगा, आपको सच बोलूंगा कि मतलब मेरे को लाइफ में कई बार प्यार हुआ और धोखा मिला। तो आज के टाइम में मेरे को किसी भी लड़की पे, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता है, हमेशा शक की निगाह मैं उसको देखता हूँ। और प्लस में कि मतलब ये क्वेश्चन है कि मतलब क्वेश्चन पहला मेरा यह है कि पढ़ाई लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये नहीं है सक्सेस के मामले में। और दूसरी चीज कि मैं लोगों पे जो मतलब जो ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ अभी, तो उस चीज को मैं दोबारा से कैसे करूँ, क्योंकि मेरा ट्रस्ट कई बार टूटा है, तो आज के टाइम में मेरे को ट्रस्ट नहीं आता इवन सच में किसी में। और दूसरी चीज ये है कि मैं लाइफ में मतलब एक टाइम था कि मैं अपने अपने फादर, जो मेरे फादर है ना, काफी ज्यादा
चंचल शॉर्ट में करना, इतना ज्यादा इतना लंबा भी समय कम है, शॉर्ट में थोड़ा क्वेश्चन एक दो कर लो, फिर आराम से चर्चा कभी और कर लेंगे।
ओके ओके। तो अपने लाइफ में मेरे
आपके प्रश्न को हम दो प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, बाकी का डिटेल बाद में। आपका था कि पढ़ाई जरूरी है या नहीं और लोगों पर ट्रस्ट कैसे रिबिल्ड करें, ये दो हम बता देते हैं, बाकी का डिटेल फिर आगे कभी। आप हमसे संपर्क कर लेना, आप अगर IYF ग्रेटर नोएडा पे, ओके, आप सबके लिए ये भी हम देना चाहते हैं कि आप लोग जब मेल भेजोगे तो हो सकता है आप और भी ज्यादा विस्तार से चर्चा करना चाहो, तो हम लोग फिर और भी संपर्क में रह सकते हैं। सो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि पढ़ाई जरूरी है या नहीं, क्योंकि बचपन से आपको रहा नहीं रुचि। पढ़ाई हमारे जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके द्वारा हम चीजों को सही दृष्टि से समझने की बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। डिग्री हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, डिग्री तो मिलती रहती है, समझने की बुद्धि हमारे अंदर आती है, तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। और वैसे भी आजकल के समय में लोगों को पढ़ाई के अनुसार जाना जाता है, उनके अच्छे गुणों के अनुसार नहीं, तो फिर इसीलिए थोड़ा बहुत जरूरी है। अगर आप किसी तरह कर सको तो थोड़ा सा रहना चाहिए ताकि समाज में आपको कुछ ऐसे समझ में चीजें समझ में आने में अच्छा रहे। बाकी वैसे अगर आप भक्ति में भगवान के उसमें आगे बढ़ो तो वो भी अच्छा है। दूसरी चीज, ट्रस्ट रिबिल्ड कैसे करना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि अगर बहुत सारे लोगों ने किया है लेकिन उससे जीवन नहीं रुकता, जैसे हम दिल्ली के उस रेप केस की बात कर रहे थे, निर्भया रेप केस की, तो किसी बस में उसका हुआ लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद सारी बसें दिल्ली में चलनी बंद हो गई। कभी कभी कोई डॉक्टर होते हैं वो गलती कर देते हैं, डॉक्टर की गलती से कोई मर जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि लोग डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं। सो बहुत बार हुआ है, मानते हैं, लेकिन अब हमें संभाल कर करना चाहिए। क्या करना चाहिए संभाल कर, कि हमें एक चीज जाननी चाहिए कि हमारे एक ऐसे मित्र हैं, हमारे एक ऐसे प्रेमी हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ते, किसी अवस्था में नहीं छोड़ते। तो इसलिए सच्चे प्रेम की ओर बढ़ना है, और सच्चा प्रेम हमें मिलता है जब हम भगवान से जुड़ते हैं, क्योंकि भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। प्रेम करना है तो भगवान से करिए, वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, हमेशा आपके साथ है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बदलाव लाना है, ट्रस्ट तो करना होगा, ट्रस्ट के बिना जीवन नहीं चल सकता, लेकिन हाँ, किस पर ट्रस्ट करें और कितना ट्रस्ट करें ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको प्रयास करना चाहिए अच्छे से समझने का। तो आप हमें लिखिएगा चंचल, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप में से सभी लोग, केवल चंचल ही नहीं, आप में से सभी लोग हमें अगर लिखें तो हमें अच्छा लगेगा। आप लोग कृपया लिखिएगा IYF ग्रेटर नोएडा पर, और फिर आपसे हम संपर्क में रहेंगे। अच्छा, सो अभी हमें यहाँ मेरे ख्याल से रुकना पड़ेगा, बहुत देर हो रही है, हमारा अभी आगे भी एक दूसरा एक लेक्चर है। सो आशा करते हैं आप सबको थोड़ा कुछ लाभ हुआ हमारे ये दो दिन के लेक्चर से, और अब दो दिन और हम अगले सैटरडे संडे मिलेंगे आपसे। चार दिन का सेशन है, अभी दो ही दिन हुआ है, दो दिन और मिलना है। आप में से कई लोग हमें दिख भी रहा है वीडियो पर, और हम देख मैसेज भी आ रहे हैं, कई लोग हमसे बात करना चाहते हैं। आप सबके लिए हम अवेलेबल हैं, आप प्लीज हमें लिखिए, और ये मेडिटेशन का सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए, वो इसी हफ्ते होगा, आपको सूचना आएगी, और उसमें जरूर आप आइएगा, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हरे कृष्णा। कृपया फॉर्म भरिएगा जरूर, फॉर्म भरे बिना मत जाइएगा।